ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जं जस्स जमिदेशे येन विहाणेन जमि कालं मे णादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्सतमिदेशे तेन विहाणेन तं निकालं मे कोसक्कदिवारे दुं दो वा तः जिणिन्दो वा एवं चो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपजाय सो सद्दिट्ठि सुतो जो संकदि सोहुकुदिट्ठि।
जिनागम के आधार से हम कारण कार्य रहस्य को पहचानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रथम हमने सर्वज्ञ का स्वरूप देखा है, उसकी सिद्धि और उसके भ्रम का निवारण भी देखा है, उस संबंधी जो भ्रांत कल्पनाएं उसका निराकरण भी किया, चार अभावों की चर्चा भी चली अपनी यहाँ पर, और अभी कार्य के जो कारण है उन कारणों की चर्चा शुरू कर दी है। हमने दो कारण देखे हैं, पर्याय को कार्य कहते हैं, हर समय में हर गुण में अपनी अपनी पर्याय यानी अवस्था होती रहती है, नई नई अवस्था होती है, पुरानी अवस्था मिट जाती है, चली जाती है, उसको कहेंगे नए पर्याय का उत्पाद और पूर्व पर्याय का विनाश। ये कब से चला रहा है? अनादि से। तो थोड़ा उसको आराम बिरना आराम करेगा कि नहीं? सिद्ध होने पर, सिद्ध होने पर कार्य रुकेगा ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, मैं इन भाई साहब को पूछ रहे हैं आपको, ये कार्य रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। यानी सिद्ध होने पर लोग पूछते हैं तो सिद्ध होने के बाद क्या करना क्या करना है? हम अभी कुछ किसका क्या कुछ पर का कुछ कर सकते हैं ऐसी मान्यता है, तो यहाँ तो हम धंधा पानी करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, थोड़ा टीवी भी देखते हैं और मूड बने तो प्रवचन भी सुनते हैं, तो उधर सिद्ध भगवान होने पर क्या करना? ऐसा प्रश्न पूछने वाले हमको मिलते बहुत सारे। तो ये तो प्रत्येक गुण में प्रत्येक समय में अपना अपना कार्य हो रहा है, कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ जो हम कारणों की चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक समय की पर्याय में दो कारण विद्यमान है। कौन से? एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। उपादान कारण तो द्रव्य की निज शक्ति है और निमित्त कारण जो है अन्य द्रव्य की वहाँ उपस्थिति मात्र है, वो है वहाँ पर, परंतु अन्य द्रव्य के कार्य में कुछ हेरा फेरी, मदद, असर, प्रभाव कुछ नहीं करता। निमित्त के हमने दो प्रकार देखे थे, किसी को याद है? हाँ बोलो, पीछे बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग निमित्त किसे कहना बोलो? हाँ, जो नियम रूप निमित्त है, यानी उस कार्य में ऐसा कार्य जिन जिन जीवों का चल रहा है या कोई किसी भी पुद्गल का जिसका हो, तो उसमें जो नियम रूप निमित्त पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अंतरंग निमित्त। और जो अन्य अन्य के लिए अन्य अन्य निमित्त हो सकता है उसको कहेंगे बहिरंग निमित्त, या उसको बाह्य निमित्त भी कहेंगे हम। सम्यक दर्शन की बात तो हमने देखी थी, क्षायिक सम्यक दर्शन में कौन लगाएगा? अंतरंग निमित्त कौन है? क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ किसी को? हाँ बोलो। हाँ, बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, क्या यह सही है? बाह्य देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान तो औपशमिक सम्य दृष्टि को भी है, क्षौपशमिक सम्य दृष्टि को भी है, वो कारण थोड़ा ही है। तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में देशना लब्धि मत कहना उसको। अरे वो तो क्षायिक सम्य दर्शन है, देशना लब्धि तो हम प्रथम उपशम सम्यक के पूर्व में कहेंगे, वहां है वो उनका उपदेश, उससे वो जो क्षोपशम सम्य दृष्टि है वो वहां क्षायिक सम्य दृष्टि हो जाता है। वो ऑलरेडी सम्य दृष्टि तो है जीव, जिसके समय क्षोपशम सम्य दर्शन है वही क्षायिक सम्य दृष्टि होता है। तो वहां तो हम कहेंगे केवली के या तीर्थंकर के पाद मूल में, परंतु सब में नियम रूप कौन सा है, वहां कार्य उसी समय कौन सा देखने में आ रहा है? तो इन कर्मों का क्षय, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी चार, इनका सत्ता में से पूर्ण विनाश हो जाना, अकर्म रूप हो जाना, उसको कहेंगे हम कर्मों का क्षय हुआ है, वो उसको हम अंतरंग निमित्त कहेंगे। और बहिरंग में तीर्थंकर हो, किसी के केवली हो, और ऐसा जरूरी नहीं कि महावीर तीर्थंकर ही चाहिए, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वहां तो उसको हम बाह्य निमित्त में ले लेंगे। ऐसे हर एक कार्य पर हम घटित कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से हमने निमित्तों के दो भेद देखे थे, हाँ, उदासीन और प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्तों के कोई नाम बताएंगे आप? हाँ बोलो, कौन कौन से निमित्त उदासीन निमित्त है? हाँ बोलो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अभी हमें मालूम है किस किस में निमित्त होता है, तो वे सारे उदासीन निमित्त कहलाते हैं। क्यों? हाँ बोलो, आप बोलो, क्या प्रश्न था मेरा? उनको उदासीन निमित्त क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेरक निमित्त किसको कहते हैं? इच्छावान और क्रियावान, इनको तो हम प्रेरक निमित्त कहते हैं, और इनके अलावा जो अन्य कोई द्रव्य है उनको हम कहेंगे उदासीन निमित्त। इसकी तो चर्चा अपनी हो गई है। देखो, ये निमित्त कारण और उपादान कारण, इनकी चर्चा क्यों इतनी आवश्यक है? निमित्त से कार्य नहीं होता ना, तो उसका नाम क्यों लेते हो? बस उपादान की चर्चा करो ना। तो निमित्त होता है और कार्य उसके द्वारा होते हुआ भासित होता है, और इस कारण हमारी निमित्ताधीन दृष्टि बनी है। दृष्टि का अर्थ क्या है? मान्यता। कैसी है? निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसी जो विपरीत मान्यता इस जीव के अनादि से बनी हुई है, तो उससे क्या बिगड़ता है? मानने दो ना, क्या होता है उसे? कर्तृत्वपने की भावना दोनों प्रकार से होते। एक तो अहंकार होता है कि मैं परद्रव्यों का कुछ कर सकता हूं। देखो, मैं तो निमित्त हूं कि नहीं? देखो, ये मंदिर इतना अच्छा बना ना, मैंने नहीं बनाया, परंतु मैं निमित्त तो हूं कि नहीं हूं? मेरा शुभ भाव तो निमित्त है कि नहीं निमित्त? तो हम किसी ना किसी बहाने से हम उसकी कर्तृत्व बुद्धि कायम रखना चाहते हैं। निमित्त कहते ही है जो कुछ नहीं करता, तो कहते मैं कुछ नहीं करने वाला तो हूं क्या नहीं हूं? क्या पूछा? मैं निमित्त तो हूं ना मंदिर बनने में। तो इसने अपनी कर्तृत्व बुद्धि कायम रखी और उसको कर्तृत्व बुद्धि का पर कर्तृत्व का अहंकार हो गया है। दूसरी बात, कोई निमित्त आकर मेरा कार्य कर दे तो होगा। ये जो कर्म जो है ना दर्शन मुनि के, वो जो हट जाए, उसका उदय रुक जाए, तो मुझे सम्य दर्शन हो जाएगा। कोई देवशास्त्र गुरु आके मुझे समझाएंगे तो मुझे सम्य दर्शन होगा। ये निमित्ताधीन दृष्टि है। जब जीव की योग्यता यहां तैयार होती है तो सामने निमित्त हाथ जोड़कर हाजिर होता है, ऐसे कहते हैं ना। कैसे? आप सबको तो महावीर भगवान के पूर्वभव की तो कथा पता है। आदिनाथ भगवान का समोचरण चल रहा था तो महावीर का जीव वहां था कि नहीं था? क्या नाम था उसका? मारीची। तो मारी जी तो मुनि अवस्था धारण किए हुए था, और जब प्रश्न आया कि यहाँ कोई भविष्यकालीन तीर्थंकर है क्या, यहाँ पर समोचरण में कोई है तो बताया, हाँ ये जो मारीची है ना वो 24वां तीर्थंकर होगा। उनको गुस्सा क्यों आया? हम तो होते तो आनंद से फूल जाते कि नहीं। हाँ क्यों गुस्सा आया बोलो। हाँ ऐसा थोड़ा ही है। हाँ बोलो। हाँ तो ये 24वां तीर्थंकर और पहला तीर्थंकर इनमें कितना काल का अंतर है? हाँ करीबन एक कोड़ा कोड़ी था ना, हम थोड़ा कम कर देंगे उसमें, फिर भी एक कोड़ा कोड़ी सागर। और त्रस पर्याय कितने काल तक रहती? किसी जीव को अधिक से अधिक मिल जाए, त्रस पर्याय की स्थिति कितनी उत्कृष्ट स्थिति, हाँ 2000 सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 2000 सागर कितनी बार आएगा? कोड़ा कोड़ी का अर्थ समझते हो? 1 करोड़ गुना 1 करोड़, एक के ऊपर कितने जीरो आते हैं कोड़ा कोड़ी में? 14 जीरो, इतने सागर वर्ष। तो 2000 कहाँ और कोड़ा कोड़ी कहाँ? तो कितने बार एक इंद्रिय में घूम घूम के आया होगा कि नहीं? कोई जीव त्रस में से एक इंद्रिय में चला जाए कितने काल तक अधिक से अधिक घूम सकता है? अभी हम महावीर की बात नहीं कर रहे। कोई जीव त्रस पर्याय, त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल हमने देखा, सबको मिलता है ऐसी बात नहीं है, परंतु किसी को त्रस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 2000 सागर। कोई जीव एक इंद्रिय में चला गया त्रस में से अधिक कितने काल तक भटक सकता है कि जब वापस उसको त्रस में आना पड़े? हाँ नहीं तो ढाई पुद्गल आप कहते हैं और वो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन। आपका क्या कहना है पीछे? एक इंद्रिय में घूमने का उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, ये ढाई पुद्गल परिवर्तन वो निगोध का काल है, अकेले निगोध का काल। मात्र निगोध में भटकेगा तो ढाई पुद्गल परावर्तन। एक इंद्रिय हमने कहा ना, सभी एक इंद्रिय, पांचों एक इंद्रिय, कभी निगोध में जाए, कभी पृथ्वी काय को, कभी अग्नि काय को, कभी जल काय को, फिर कभी निगोध में चला जाए, इतना लंबा काल। तो महावीर के ख्याल में तो आ गया कि नहीं वो मारीची के, इतना काल तो मुझे नियम से एक इंद्रियों में कितना काल बिताना पड़ेगा, मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा, ऐसा मान चढ़ गया उनको। वहां निमित्त था कि नहीं था? था ना। आप क्या कहते? आदिनाथ भगवान जैसा उत्कृष्ट निमित्त, भरत चक्रवर्ती जिनके पिता और जिनके दादा तो तीर्थंकर हो गए, तो निमित्त था कि नहीं था बोलो? था। आप क्या कहते हैं? निमित्त था कि नहीं था? था। तो निमित्त था और कारण नहीं हुआ, ऐसा है? निमित्त कहते किसके है? कोई हमें परिभाषा सुनाओ, कौन सुनाना चाहता है? हाँ बोलो। हाँ तो निमित्त किसे कहते हैं? कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। तो कार्य होने के पहले ही अनुकूलता का आरोप आएगा क्या? कार्य होने के समय में आएगा। तो वहां मारीची को कार्य हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक दर्शन का नहीं हुआ तो निमित्त था, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ हम क्या कह रहे हैं? वहां निमित्त था का हमने पूछा, कार्य नहीं हुआ ना उनका। कौन सा? हम सम्यक दर्शन रूपी कार्य की बात कर रहे हैं। हाँ आप कहेंगे वहां निकल गया, गुस्सा आया उनको, उसका निमित्त है अरिहंत ये अपने आदिनाथ भगवान, ऐसे थोड़ा ही हमने पूछा आपको। जब कार्य होता है तभी हम निमित्त, वहां निमित्त होता है। तो आदिनाथ भगवान को तो हम निमित्त भी नहीं कहेंगे, उनके लिए जब उनके समय दर्शन की योग्यता हुई, कब हुआ था समय दर्शन महावीर को? जो हमें पता है उसकी बात करेंगे ना, पहले होके छूट गया हो उसकी बात नहीं कर रहे। कंटिन्यूअस रहा तो हम कहेंगे 10 भव पूर्व, महावीर के 10 भव पूर्व सिंह की पर्याय में उनको समय दर्शन हुआ। ये पशु अवस्था, समय दर्शन होने की योग्यता पक गई, अभी सम्यक दर्शन होना है तो अभी निमित्त कहां से लावे, आपको तो पता है दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, उन्होंने देखा जंगल में सिंह है और उन्हें भी उस समय ऐसी भावना हुई कि उसको, अरे ये तो भावी तीर्थंकर है ये जीव, तो जाना ना उन्होंने अवधि ज्ञान से, तो कैसा उपदेश दिया होगा, कैसा संबोधन किया होगा, या कैसी मुद्रा उनकी देखकर उनको ऐसे भाव हो गए कि उनके वो तो सारी उपलब्धियां वगैरह सब प्रकट हुई और उनको समय दर्शन हो गया। तो जब जीव स्वयं अपने उपादान से कार्य रूप परिणमता है तब हम कहेंगे उनको, अभी हम चारण रिद्धिधारी मुनियों को निमित्त कहेंगे, उनके समय दर्शन के लिए हमने आदिनाथ को निमित्त नहीं कहा। हम तो किसी निमित्त को जुटाना चाहते हैं या किसी को हटाना चाहते हैं क्योंकि हम कोई कार्य करना चाहते हैं। तो क्या हमारे जुटाने से निमित्त आते हैं कि नहीं आते हैं? क्योंकि हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्त आएगा तो कार्य होगा, तो हम आकुलित हो जाते हैं कि अरे हमको तो ये सब पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, क्यों बेन, ऐसा लगता है ना, अरे कोई हमें उपदेशदाता ही नहीं मिला, अभी तो कितने साल गुजर गए हमको कोई नहीं मिला समझाने वाला, हमारा अभी क्या होगा। जिसके यहाँ ज्ञान पर्याय की योग्यता तैयार होती है और उसको समझाने वाला या कोई पुस्तक, कोई भी अन्य किसी भी, क्योंकि हमने देखा बहिरंग निमित्त तो अलग अलग हो सकते हैं, अंतरंग निमित्त में तो हम कहेंगे जिसका ज्ञान खुलना है उसका उसका ज्ञानावरण का क्षोभ ऐसा हो जाता है, तो वहां तो निमित्त सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि है तो या तो पराधीनता से उसको आकुलता होती रहती है, अपने को हीनदीन मानता है, या पर का मैं निमित्त हूं ऐसा मानकर कर्तृत्व का अभिमान करता है। ये जो दोनों ही बातें हैं उसको निराकुल आत्मिक सुख उत्पत्ति में यानी सम्यक दर्शन होने में बाधक है। जब तक निमित्त से कार्य होता है यह मान्यता कायम है तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त उपादान की ये सारी इतनी कारण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने उपादान से होता है, हम भी एक जीव द्रव्य है, हमारे भी प्रत्येक पर्याय स्व समय में स्वयं से अपने में अपने से होती है, निमित्त से होती ही नहीं, जब जब वो पर्याय होती है तो वहाँ जो उचित निमित्त होगा वो अपने आप वहाँ हाजिर होता है स्वयं उसके अपने कारण, हमारे लाने से न वो आता है न हमारे से हटाने से कुछ हट जाता है। तो हमारी कितनी चिंता मिट गई, क्योंकि हमारी दृष्टि हमारे तो हम जो है बाहरी ढूंढते रहते हैं, मुझे ये निमित्त चाहिए वो निमित्त चाहिए, ये निमित्त होगा तो मेरा कार्य होगा वो होगा, तो कुछ भी कार्य होता तो पहले चर्चा सारी निमित्तों की होती है ना। हमने सुना किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे क्या होगा, कैसे जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था, तो कैसे हुआ, कहाँ एडमिट किया, कौन से डॉक्टर के पास ले गए, अरे वहां क्यों लगे, उसके पास जाना था ना। कोई मान लेते हैं कि ट्रेन में सफर कर रहा था और मर गया तो क्या कहते, अरे 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 ट्रेन से क्यों गया, कार से जाता ना, तो क्या उसका, अभी हमने जो मंगलाचरण गाया ना, जम जस जम्मी देह से, जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस विधान से जिस समय, वो सारी जो बातें लगाओ, अभी जो जो घटना होनी है वो तो होगी ही होगी, जिनेन्द्र भगवान ने उसको जाना है, उसी क्षेत्र में उसी विधान से उसी निमित्त से सब कुछ, निमित्त भी पांचों समय अभी हमने सीखे नहीं है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होना है। तो हमको ना निमित्त लाने की चिंता करनी है ना कुछ टालने की चिंता करनी है, होगा तो वही होगा जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी योग्यता है वैसा होगा, तो इसी को हमें स्वीकार करना है। ऐसा जब स्वीकार होता है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज होते, सहज शब्द बारंबार आएगा क्योंकि पर्याय ही स्वयं सहज होती है तो उसके कारण भी सहज ही वहां उपलब्ध होते, हमें कोई चिंता आकुलता करने का कोई कारण ही नहीं है। देखो हमने ये सारी बातें चर्चा की है, 70 पृष्ठ निकालना ये कारण कार्य रहस्य पुस्तक का 70। देखो ऊपर से ही पढ़ेंगे, जब तक निमित्त से ही कार्य होता है यह मान्यता रहेगी, यह मान्यता खोटी है ना, निमित्त का ज्ञान किया जाता है, क्योंकि निमित्त है तो उसको ज्ञान भी उसको जानेगा, परंतु उससे कार्य होता है जब तक ऐसी खोटी मान्यता रहेगी तब तक उस जीव की निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी नहीं। अपने कार्य के लिए वह अन्य व्यक्ति तथा कर्म की ओर आशा भरी निगाहें लगाकर बैठेगा। कब हमारा कर्म छूटेगा, अरे क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, कर्म का ऐसा आकरा उदय आ गया है, इसलिए हम दुखी हैं। वो कर्म कब हमारे हटेंगे और कब हमें अच्छा संयोग मिल जाएगा, यानी उसने सारा ही अपना कर्ता धर्ता कर्म को मान लिया। अन्य मत ईश्वर को मान रहे, हम जैनियों में आ गए तो कर्म के और निगाहें लगा कर बैठ गए, कर्म की पूजा करेंगे ना तो हट जाएंगे, भगवान तो हमारा कुछ करता नहीं है, क्यों तो कर्म को तो थोड़ी कर्म की पूजा करेंगे तो बेचारे हट जाएंगे, हमको रास्ता दिखाएंगे। देखो, मैं अन्य पदार्थों का, धंधा व्यापार का, घर गृहस्थ का करता हूं आदि मान्यता रहेगी तब तक कर्तृत्व बुद्धि का बोझ कभी हटेगा नहीं। परकर्तृत्व के अहंकार और आकुलता के साथ जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप का निराकुल वेदन नहीं कर सकता। ये आनंद कहो, सुख कहो, निराकुलता कहो, एक ही बात है, उसको अपने निराकुलता का अनुभव करना है। और यहाँ वो टेंशन लेके बैठा है, आकुलता सहित है या कर्तृत्व का अभिमान है, तो उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। अभी हम और भी आगे देखेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध में, आगे पढ़ेंगे हम। एक बात है, अभी तक तो हमने परद्रव्य को निमित्त कहा है, परंतु बनारसी दास ने भी कहा है, देखो, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, पर कहा तो पर में पर पदार्थ भी आते हैं। और एक ही द्रव्य की अगर बात करते हैं तो एक गुण के लिए दूसरा गुण भी वहां निमित्त रूप से होता है। एक ही द्रव्य में ऐसा कोई आपको गुण मालूम है जो निमित्त रूप से कार्य कर रहा है अन्य गुणों के लिए? हाँ, जीव का श्रद्धा गुण किसमें निमित्त है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो उसका उपादान है। वो हमने निमित्त की बात पूछी, जीव का या किसी द्रव्य का कोई एक गुण दूसरे गुण में निमित्त होता है क्या अपने उसके कार्य में? हाँ बोलो, क्या करता है ज्ञान गुण? हाँ, अच्छा, दूसरा कोई? वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के निमित्त से, निमित्त शब्द है ना, कारण से ने निमित्त से क्या है आगे? हाँ, द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है। अस्तित्व गुण के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। तो मैं पूछू, ज्ञान गुण का जो कार्य चल रहा है कौन सा? जानना, 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 उसका उपादान कारण क्या है? ज्ञान गुण। और उसका जो हर समय ये जो कार्य चल रहा है ना, अपना अपना कार्य कर रहा है, तो उसमें हम वस्तुत्व गुण को निमित्त कहेंगे। वो निरंतर हर समय क्यों परिणमित हो रहा है ज्ञान गुण, उसमें कौन सा गुण निमित्त होगा? द्रव्यत्व गुण। क्योंकि द्रव्यत्व गुण की परिभाषा क्या देखी हमने? जिस शक्ति के कारण से ये जो द्रव्य का परिणमन है वो निरंतर अंतर छूटे बिना हर समय हर समय हर समय होता है। यदि हम उसको अगर एक द्रव्य में हमने भेद करके एक गुण को निमित्त बनाया अन्य गुणों के लिए भी, तो वहां पर का अर्थ है अन्य गुण भी उसका अर्थ हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक की हमने बहुत उदाहरण भी देखे थे। बहत्तर पृष्ठ निकालना, 72। देखो यहां बीच में ही जो है दूसरा पैराग्राफ, दूसरा का तो हमने देख लिया, तीसरा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो हमने देखा था ना, क्यों? प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं करता है। तो ये तो अभी कहेंगे ये तो बहुत स्थूल बात हुई, एक ही द्रव्य में जो रहने वाले अनंत गुण है वो एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। ज्ञान गुण अपना अपना कार्य करता है, जानना 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 जानना। श्रद्धा गुण अपना कार्य करता है, मानना 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 मानना। दर्शन गुण अपना कार्य करता है, दर्शन दर्शन जो कुछ सामान्य अवलोकन। ऐसे ही हर गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। इतनी ये द्रव्य की स्वतंत्रता है, गुणों की स्वतंत्रता है, और पर्याय भी अपने निश्चित समय पर स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ये षटकारक का विषय अपना हुआ नहीं है, वो होगा, क्योंकि पर्याय के बारे में कारण कार्य में षटकारकों की भी चर्चा आने वाली है। तो द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है, और प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। हमने अभावों के द्वारा भी स्वतंत्रता की बात देखी थी, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा भी हम देखेंगे, और आगे उपादान कारणों की और विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें भी ये स्वतंत्रता पता चलेगी। तो वस्तु की स्वतंत्रता यदि नहीं जानते हैं, उसका स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक अपने स्वयं की ओर जीव नहीं मुड़ेगा, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब यहाँ नीचे हम पढ़ना चाहते हैं जो महत्व का एक बिंदु है। तो फिर हम निमित्तों की खोज करें या न करें, है उन निमित्तों को रखना या छोड़ देना, प्रश्न तो है ना। क्योंकि अभी मान्यता ठीक नहीं हुई है तो ऐसे उलझन भरे प्रश्न उठते हैं। तो निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है। ये छह द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है निमित्त वाला है? इस विश्व में अनंत द्रव्य है, जाति अपेक्षा छह द्रव्य है। उसमें उपादान वाले द्रव्य कितने और निमित्त वाले कितने हैं, बोलो? कोई उपादान वाला द्रव्य नहीं है। अरे सभी द्रव्य उपादान रूप अपने अपने पर्यायों का करता है, और उसमें जो अनुकूल लगे उसको हम निमित्त कह देंगे। क्यों? क्या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य केवल निमित्त रूप है कि उपादान उनका अपना भी कार्य चलता है? हाँ, तो प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य चलता है, वो उसकी अपनी उपादान शक्ति है, निज शक्ति है। तो हम निमित्तों को लाना चाहते हैं, तो निमित्त नाम का कोई द्रव्य तो है नहीं, फिर भी जिसको हमने निमित्त मान लिया है उसको हमने लाया भी। तो द्रव्य कोई निमित्त होता ही नहीं, उसकी पर्याय निमित्त होती है। तो भले हमने उस द्रव्य को लाके रखा, तो उसका परिणमन तो उसके स्वयं के अधीन स्वयं के कारण होगा। तो हम जो निमित्त चाहते हैं वो हमारे लाने से ना आते हैं, ना उसको टालने से टलते हैं। क्या कहा? ये जो अभी बात हुई थी ना, अभी मारी जी की और महावीर की भी देखी थी हमने, टालने के बाद देखते हैं। नेमिनाथ भगवान का समोचरण चल रहा था, किसी के मन में प्रश्न आया, ये द्वारका ऐसी जो ये सोने की द्वारका है कब तक रहेगी? तो क्या उत्तर आया? 12 साल के बाद जलेगी। उसका निमित्त भी बता दिया, द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। वो क्यों क्रोध आए उसका भी निमित्त बता दिया, कि जो राजकुमार है यादव वो मद्य पीकर उनको उपसर्ग करेंगे और उनको क्रोध आएगा, वो जलेंगे। इतना सारा निमित्तों का कथन जानकर यादवों को उन्होंने ठान ली कि अभी इसको टालना है। उनका सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धान था कि नहीं था? हाँ, नहीं था तो वो टालने की क्यों कोशिश की, और था तो भी टालने की क्यों कोशिश की? क्या मैं तो कितने ही जीवों को ये सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि कैसी 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 यानी विपरीतता होती है, कैसे कैसे पुण्य पाप के खेल होते हैं। तो कितने ही ने मुनि दीक्षा ले ली, कितने ही तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो गए, कितनों को तो ये सुनकर सम्यक तो हो गया। और बाकी यादवों ने क्या किया, ये सारे मद्य बनाने की सामग्री थी ना पूरे उनके प्रदेशों से, वो हटाकर सारी जंगलों में दरियों में फेंक दी। मद्यबंदी हुई थी ना तब से, गुजरात में बहुत काल चली, तब से चली आ रही। नेमिनाथ भगवान के काल से। अभी तो क्या है, सब चला है, अपना राज है ना। तो क्या हुआ फिर, द्वीपायन ने सोचा अपने कारण इतनी महान हिंसा और इतना अनर्थ होने वाला है, हम ही यहां से चले जाएंगे तो हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे निमित्त से द्वारका कैसे जलेगी, वो भी चले गए। तो घटना टली कि नहीं टली? हाँ टल गई घटना, टली का नहीं टली तो निमित्त तो अन्य कुछ हाजिर हुआ होगा उसका, नहीं तो दूसरा कुछ निमित्त बना, कि निमित्त भी वही बना तो वो नहीं बताते तो अच्छा था ना। वो यदि नहीं बताते कि द्वारका जलने वाली है तो वो क्यों सारी सामग्री फिकवा देते। फिर वो राजकुमार तो टहलने के लिए गए वन में, बहुत प्यास लगी, कहीं पानी नहीं नजर आया तो हाँ दूर तालाब दिखा तो उसमें वो सारा मध्य की सामग्री सड़गल गई थी और अच्छी वो मदिरा बहुत पावरफुल हो गई थी, तो उन्होंने वो तो पानी समझकर प्राशन कर लिया। फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते आ गए तो रास्ते में द्वीपायन दिखे। अपन तो चले गए थे ना, वो पहले क्यों आ गए? हाँ, तो एक जो अधिक मास होता है ना उसको घिनना भूल गए, याद नहीं रहा जो कुछ है। देखो जैसी होनी है जैसी होती है ना, जैसी भवितव्यता होती है वैसे ही सहज उसके वैसे भाव होते हैं। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, बुद्धि भी वैसी होती है। तो वो आ रहे थे और इन राजकुमार ने देखा, अरे यही तो द्वीपायन है, चलो इसको मारो, तो पत्थर उठा उठा कर मारने लगे तो उनके भी ऐसा क्रोध हो गया। देखो मुनि अवस्था फिर भी ऐसे क्रोधित हो गए, मुनि अवस्था तो क्रोध आने पर, ऐसा क्रोध आने पर तो रहेगी नहीं। फिर भी जो तब जो थे भावलिंगी थे ना पहले, तो उसके कारण तो उनके तो ये अशुभ तेजस शरीर की उत्पत्ति हुई और वो सारा जलाकर फिर मुनिराज स्वयं भी भस्म हो गए और चले गए। कहाँ गए? नरक में नहीं गए, भवनवासी में गए। तो ये जो घटना होने वाली उसका निमित्त भी बताया था भगवान ने, ज्ञान में आया और वो बताया भी, और उसके टालने की पूरी कोशिश कर दी गई थी, फिर भी जैसा होना था वैसे ही उसी क्रम से उसी निमित्त से उसी ठिकाने में उसी पद्धति से सब कुछ हो गया। इसका अर्थ क्या है? आप कहेंगे फिर हम पराधीन हो गए। पराधीन कहाँ हुए? हमें तो निराकुलता आ गई कि ना, ना हमें कोई टालने की चिंता है ना कोई लाने की चिंता है। तो इसको हम स्वीकार करेंगे तो हमें तो बिल्कुल निराकुलता होने हो जाने वाली है। अभी हम और जरा आगे बढ़ेंगे। टोडरमल जी ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। देखो आत्मख्याति में भी आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि ये जो आत्मख्याति टीका लिखी गई है ये शब्दों की रचना है, वो मैंने यानी अमृतचंद्र सूर्य ने लिखा है, ऐसे मोह से मत नाचो। क्या कहते हैं? हाँ आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो क्या कहा उन्होंने, हमने डायरेक्ट अर्थ बता दिया कि ये रचना जो है ये शब्दों के द्वारा हुई है, अक्षरों से और शब्दों से ये रचना हुई है और इसका कर्ता मैं हूँ या अमृतचंद्र सूर्य, ऐसे मोह से मत नाचो। तो हम क्या कहते, अरे ऐसा विनय से कहने के लिए कह दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्होंने सत्य परिस्थिति बताई है। ये जो शब्द रूप परिणमन होता है ये तो भाषा वर्गणा का कार्य है। हमारे यहाँ जो ये हॉल बना ये परमाणु का कार्य है। किसने बनाया इसको? कारीगर कहेंगे हमने बनाया, सेठ कहेंगे हमने पैसे दिए, समाज कहेंगे नहीं नहीं हमने इकट्ठे करके इतनी भावना बनाई थी इसलिए बन गया। तो किसने बनाया हमको निश्चित करना है। ये जो हॉल बना ना इतनी अच्छा, ये स्मारक ट्रस्ट बन गया, इतना सारा मंदिर बन गया, मूर्ति बन गई, किसने बनाया बोलो भाई? हाँ पुद्गल परमाणु की रचना है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमारा सारा श्रम बेकार गया, निमित्त बन गए ना, कौन बने? देखो यहां निकालो, ये 78 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पृष्ठ पैराग्राफ। तुम पूछोगी तुम उपदेश क्यों दे रही हो, पत्र रूप स्वाध्याय क्यों कर रही हो, तो गुरुदेव हमेशा ऐसी बात आती थी ना, उनको भी पूछते थे, ये परमागम मंदिर है ना, इसमें ये सारी खुदाई में सब सारे पांचों ही परमागम ने खुदवाए हैं, इतनी बढ़िया ये सारी रचना हुई आपके कारण हो, तो क्या कहते थे? कौन करे? क्या कहते थे? कौन करे? कौन करे का अर्थ है ये दूसरे किसी अन्य द्रव्य का कार्य नहीं है, परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्रपणे उस कार्य रूप परिणमित होता है, और हम उपचार से किसी को कहते हैं आपके कारण हुआ, आपके कारण हुआ, आपने ये इसमें बहुत अच्छा आपके प्रेरणा से ये कार्य, ये कथन पद्धति है। परंतु यदि हम वैसा मानेंगे तो ये मिथ्यात्व का दोष होगा। नीचे लिखा देखो, शब्दों की रचना यह कार्य परमाणुओं की स्वयं की उपादान शक्ति से होता है, उसमें अनेक निमित्त है। जैसे अमृत चंद्राचार्य ने जो ग्रंथ रचना की, उनके भी सामने कोई शिष्य होंगे, अनेक निमित्त होते हैं, निमित्त भी एक नहीं होता है। हमने जो कल देखा था, मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, ये कार्य हुआ उसके अपने उपादान से, वहां अनेक निमित्त होते। कौन? एक कुम्हार भी है, एक कुम्हार का चाक भी है, उसका डंडा भी है, उसकी दोरी भी है, अभी ढूंढो ऐसे कितने निमित्त होते। अनेक निमित्त स्वयमेव आ मिलते हैं, और वो कार्य तो उपादान से अपने से होता है। देखो ये 79 पृष्ठ पर नया पैराग्राफ, कोई जिन मंदिर बांधता है, कोई शास्त्र छपाता है, कोई दान देता है, कोई प्रचार प्रसार में जुड़ जाता है, और हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, समाज भी प्रशंसा करते हैं ना, आप लोग जाते हैं व्याख्यान में तो समाज को भी आनंद होता है, अरे इतनी छोटी उम्र में इतने ऐसे अच्छे अपने शास्त्रों का अर्थ करके समझा रहे हैं, बहुत प्रमोद होता है उनको, और आपकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। परंतु उस समय वह कार्य करने वालों तथा उनकी प्रशंसा करने वालों को भी यह बात ध्यान में रखनी होगी, यह सारी परमाणुओं की रचना, ये जो व्याख्यान भी देते हैं, शास्त्र भी छपते हैं, शास्त्र भी सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सारी परमाणुओं की रचना, परमाणुओं की अपनी योग्यता से हो रही है, मैं इन बातों का कर्ता नहीं हूं। और हम क्या करते हैं? अपने को कर्ता मानकर, देखो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, तो हम फूल जाते हैं, जिसके कारण हमें तो अपनी कषायों की मंदता होनी चाहिए थी, उसका हम उसको कषायों के पुष्ट हो जाते हैं। तो निमित्तों की यह सारी चर्चा सुनकर तुम कहोगी हम दान दे कि न दे, यानी हम ये कार्य करें कि नहीं करें, तो करूं कि न करूं ये शब्द प्रश्न कब आता है? यदि ये हमारा कार्य हो सकता है, नहीं मैं कर सकती हूं परंतु अभी नहीं करना, तो प्रश्न पूछ रहे फिर भी भ्रांति वैसी की वैसी है कि हम दान दे कि न दे, लड्डू बनावे कि नहीं बनावे, तो लड्डू बनाने का कार्य कहाँ हो रहा है, वो आटे में जो कुछ है उसका घी शक्कर वो उसमें हो रहा है, उसकी स्वयं की योग्यता से हो रहे हैं, यहाँ तो जो कोई बनाने वाला हम जिसको कह रहे वो तो निमित्त है, उस कार्य में उसका कुछ योगदान नहीं है, फिर भी क्या पूछ रहा है हम बनावे कि नहीं बनावे। कम से कम उनके खाने का आनंद तो लूट सकते हैं ना, या तो कर्ता बुद्धि है या भोक्ता बुद्धि, अरे उसको खाने खाए के ना खाए, अब भी भ्रांति चल रही है, निमित्त को मात्र निमित्त रूप से स्वीकार करना है, कर्ता रूप से नहीं, और ये अपने को कर्ता मानकर या भोक्ता मानकर पर वस्तु की तरफ देख रहा है। जो जो कार्य होता है उसे योग्य निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है, किसी को ना हटाना है ना ही किसी को जबरदस्ती से लाना है। जीव की अनादिकालीन मिथ्या बुद्धि इसी तरह चलती आ रही है, मैं परद्रव्य का कर्ता हूं, केवल इतने मात्र से उसकी भ्रांति रुकती नहीं है, मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ। आपने तो कर्ता कर्म अधिकार में देखा होगा, जो कर्ता बुद्धि वैसे उसकी भोक्ता बुद्धि भी चलती रहती है। ये कर्ता भोक्ता के बारे में भी यहाँ बहुत विवेचन है, परंतु हम थोड़े भी आगे बढ़ेंगे। देखो 80 पृष्ठ पर हम देखेंगे। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब मिल गया, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। आपने तो दर्पण हर एक ने देखा है, हमने दर्पण के सामने एक मोमबत्ती जलाई, तो ये तो जो अग्नि का जो है ना, ये जो आपको ज्योत दिख रही है, तो सामने भी है दर्पण के और दर्पण के अंदर भी एक अग्नि दिख रही है। तो दर्पण में जो अग्नि है, जो प्रतिबिंब है, वो किसकी अवस्था है? अग्नि की है ना, हाँ, दर्पण की अवस्था है। यही बात यहां देखें, दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब है, वह दर्पण की अवस्था है, अग्नि दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुई है। दर्पण के गुण दर्पण में तथा अग्नि के गुण अग्नि में, क्योंकि हमने वो जहां अग्नि दिख रही थी तो हाथ लगा के देखा, गर्म लगा ना, दर्पण में जो अग्नि दिख रही थी ना, इस दर्पण में अग्नि दिख रही थी, हमने हाथ लगाया, गर्म होगा कि नहीं? वो दर्पण का गुण, वहां जो कोई ठंडी पर्याय चल रही थी, वो तो दर्पण तो ठंडा दिखाई दे रहा था और अग्नि तो अंदर दिख रही थी, परंतु वहां कोई उष्णता गर्मी नहीं थी। ज्ञान भी ज्ञेय को जानते हुए सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता है। जैसे दर्पण के गुण दर्पण में, सामने वस्तु जो है अग्नि, अभी हमने देखी तो अग्नि के गुण अग्नि में, अग्नि के गुण दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय के गुण ज्ञेय में, और ज्ञान जीव के जो ज्ञानादि गुण है वो जीव में, ज्ञान में, तो ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता, ना ही ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट होता है। जब ज्ञान ने जाना ये लड्डू मीठा है, तो ये जो मीठा रस है ना, वो ज्ञान में प्रविष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जब ज्ञान ने जाना ये लड्डू मीठा है, तो ज्ञान का ज्ञानमयपना नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा ज्ञान भी मीठा हुआ होगा, क्या होता है? ज्ञान ज्ञान रहकर ही उसने वो उस मीठापन को जान लिया। देखो ये जो स्कंद की बात आती है ना, तो कल का मैं एक प्रश्न लेकर फिर बंद करूंगी अभी का विषय अपना। कल ये जो बात आई थी ना, परमाणु के लिए दो ही स्पर्श होते हैं, स्पर्श गुण की दो ही पर्याय होती है, कौन सी दो होती है? स्निग्ध वृक्ष और, हाँ, ये कहां बात आई है? तत्वर सूत्र में है, तत्वर सूत्र में कहां है? हाँ, क्या लिखा है वहां पर? दो ही स्पर्श है ऐसा लिखा है, हाँ? नियम सार में गाथा नहीं मालूम, मैं बताती हूं। देखो ये पंचास्तिका में गाथा 81 और नियम सार है गाथा 27। देखो पंचास्तिका में ऐसे लिखा है, एयर सवर्ण गंधम दोफासम सद्द कारणम सद्दम खंदंतरिदम दौवम परमाणु तम वियाणाई। उसको द्विस्पर्शम कहा, दो फासम, क्या लिखा है वहां पर? परमाणु एक रस वाला, एक वर्ण वाला, क्योंकि एट अ टाइम उसको एक वर्ण होगा ना, वर्ण गुण की कितनी पर्याय है? 5। एक समय में कितनी होगी? 1। तो परमाणु में पर्याय कितनी होती है? वर्ण की एक परमाणु, एक पर्याय, तो एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला और दो स्पर्श वाला है। परमाणु कैसे बताया? वर्ण की, गंध की, रस की तो एक एक पर्याय और स्पर्श की दो पर्याय बताई है। तो ये दो पर्याय कौन सी बताई है? तो शीत और उष्ण में से एक और स्निग्ध और रुक्ष में से एक, तो उसके कॉम्बिनेशंस जो होंगे शीत के साथ उष्ण को लगाओ, शीत के साथ वृक्ष को लगाओ, फिर उष्ण के साथ वृक्ष को लगाओ और उष्ण के साथ स्निग्ध को लगाओ। इस तरह से उसके ये हो सकते, यानी उसकी स्पर्श की दो दो ही पर्याय होगी। ये यहाँ पर भी लिखा है और यही बात नियम सार में 27 नंबर की गाथा में लिखा है 27, वहां भी यही बात है। एयर सरूव गंधम दोफा समतम हवे सहाव गुणम विहाव गुणमिदि भणिदम जिन समय सौव पयणत्तम। वहां तो परमाणु को स्वभाव कहा, ये परमाणु का जो परिणमन है उसको स्वभाव गुण कहा है और जो स्कंद रूप परिणमन है उसको विभाव कहा। परमाणु को स्वभाव पुद्गल कहा है और स्कंद को विभाव पुद्गल कहा है। देखो ये कहीं शास्त्र में कहां कहां क्या अपेक्षा आती है। कल ये विषय अपना निकला था इसलिए मैंने आपको ये उसका रेफरेंस भी बता दिया। सुनाई नहीं दिया वो उसमें नहीं होते, वो स्कंद के होते हैं। स्कंद में हल्का भारी और कड़ा नरम ये जो परिणमन है वो स्कंद में है। हम कहते ना वो तो सापेक्षित है धर्म, वो तो ऐसे हल्का और भारी वगैरह, परंतु शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष ये तो परमाणु के स्कंद में भी होते हैं और परमाणु में भी होते हैं ये दो गुण। अभी हम यहीं रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो एक दो मिनट बाकी, अपना जो विषय चला उसमें निशंक हो गए ना। हाँ अच्छी बात है, चलो हम यहीं रुकते हैं अभी। बोलो 2400 भगवान की जय।